सवेरे की इस प्रार्थना में हम आज श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के चौथे अध्याय से छठवां श्लोक पढ़ते हैं। अध्याय का शीर्षक है सती द्वारा शरीर का त्याग। सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेता तपत्रव्यजनस्त्रगादिभिः गीतायनैर्दुन्दुभिः शंखवेणुभिः वृषेन्द्रमारोप्य विटांकिता ययुः। शिव के अनुचरों ने सती को बैल पर चढ़ा लिया और उन्हें उनकी चिड़िया मैना दे दी। उन्होंने कमल का फूल एक दर्पण तथा उनके आमोद प्रमोद की सारी सामग्री ले ली और उनके ऊपर एक विशाल छत्र तान दिया। उनके पीछे ढोल शंख बिगुल बजाता हुआ ये दल राजसी शोभा के साथ लग रहा था। तो ये श्लोक का संक्षेप में तात्पर्य ऐसा है कि पार्वती जी शिव जी की पत्नी है, महादेव की पत्नी है। तो जब वो अपने पिता के घर में यज्ञ के लिए जा रही है तो उसको कैसे लेके जा रहे हैं इसका वर्णन यहाँ पर किया है। शिव के अनुचर यानी कि यक्ष गण और अनेक प्रकार के जीव होते हैं जो शिव के अनुचर होते हैं और वो अपने स्वामी के सेवा के लिए तत्पर रहते हैं और महादेव की पत्नी शिव जी की पत्नी पार्वती जी को आनंद से यात्रा सफर करने के लिए यहाँ पर मदद कर रहे हैं। उनको कमल का फूल दे रहे हैं, दर्पण दे रहे हैं, उनके मनोरंजन के लिए उनकी चिड़िया उनको दे रहे हैं, सारी सामग्री जो उनको आनंद देगी वो दे रहे हैं, उनके शीश पर छत्र तान रहे हैं, उनके आनंद के लिए ढोल शंख वेणु बिगुल बजा रहे हैं। इस तरह से लग रहा था कि कोई राजा की यात्रा निकल रही है, इस प्रकार से यह वर्णन आया है। तो अगला श्लोक है आ ब्रह्म घोषोर्जित यज्ञ वैशसम विप्रसजुष्टम विबुदैश्च सर्वः मृद्दार्वय कांचन दर्भ चर्म भी निसृष्ट भांड्य जनम समाविशत। तब सती ने अपने पिता के घर पहुंची, जब वो अपने पिता के घर पहुंची दक्ष महाराज के यहाँ पर जहाँ यज्ञ हो रहा था और उसने यज्ञ स्थल में प्रवेश किया जहाँ पर वैदिक स्तोत्रों का उच्चारण हो रहा था। वहाँ सभी ऋषि ब्राह्मण और देवता एकत्र थे। वहाँ पर अनेक बलि पशु थे जो बलि देने के लिए तैयार रखे थे और साथ ही मिट्टी पत्थर सोने कुश तथा चर्म जैसे बने अनेक पात्रों से वहाँ पर वो यज्ञ कुंडल बहुत ही समृद्ध था। इन वस्तुओं की यज्ञ में आवश्यकता पड़ती है। तो इनके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने बहुत विशाल तात्पर्य दिया है, बहुत सुंदर। ऐसे कहा कि जब पति सती अपने पिता के घर पहुंची जहाँ पर यज्ञ की तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी थी और अनेक प्रकार के व्यंजन इनके यज्ञ में रखे गए थे और सबसे पहले देखा कि ब्राह्मण लोग वैदिक श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं। इससे क्या होता है, जब हम कोई शांति पंचक या स्वस्ति वचन कहते हैं तो वातावरण में पवित्रता आ जाती है, आध्यात्मिकता आ जाती है, दिव्यता आ जाती है, शांति उत्पन्न होती है, मन का जो उद्वेग है वो कम हो जाता है और जो सत्वगुण यज्ञ करने के लिए आवश्यक होता है वो सत्वगुण उत्पन्न होता है। तो ये अलग अलग योगों के जो वैदिक मंत्र है जो बड़े विस्तार में उसका उच्चारण करते हैं वो सब बहुत कठिन होते हैं क्योंकि उनके उच्चार के द्वारा उनका अर्थ भी प्रकट होता है। अगर उच्चार में हमने गलती की तो कोई अलग ही अर्थ निकलता है, कभी कभी उसका विपरीत अर्थ भी निकलता है, जो गलत अर्थ है जो प्रसंग के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए इस युग में कोई पंडित नहीं है जिन्होंने संस्कृत का अभ्यास किया है। उन युगों में हर एक व्यक्ति संस्कृत का अभ्यास करता था गुरुकुल में जाकर और कैसे किसी श्लोक का उच्चारण करना है, कहाँ पर जोर देना है, कहाँ पर नहीं जोर देना है, कहाँ पर विश्राम लेना है, कहाँ पर नहीं विश्राम लेना है, कहीं जोड़ाक्षर है, कहीं जोड़ाक्षर नहीं है, ये सबका ज्ञान किसी को नहीं है। तो संस्कृत का श्लोक तो यहाँ पर मराठी या तो हिंदी लिपि में लिखा है, उसको पढ़ने में कितना कष्ट होता है, तो जिस प्रकार से वो बनाया गया है, बड़े बड़े विद्वान जो PhD भी हैं उनको नहीं पढ़ सकते। इसलिए कलयुग में ये सबको देखते हुए कि हमारी बुद्धि, हमारी जिह्वा, हमारा आचरण, हमारे सद्गुण इतने कम हैं, इसको देखते हुए एकदम सिंपल बना दिया है। वो केवल भगवान का नाम लेना है, और भगवान का नाम लेने से राक्षसों के जो आचार्य हैं, शुक्राचार्य, जिन्होंने हमेशा देवताओं के विरुद्ध कार्य किया, राक्षसों के पक्ष में कार्य किया, अनेकों यज्ञ किए देवताओं को परास्त करने के लिए, बलि को शक्ति देने के लिए, देवताओं को नष्ट करने के लिए, वो शुक्राचार्य बलि महाराज के यज्ञ के बाद में बताते हैं कि वो तो कब की बात कर रहे हैं, वो तो सत्ययुग की बात कर रहे हैं। तो लोग बड़े विद्वान थे उस समय, लेकिन तभी भी वो बता रहे हैं यज्ञ के एंड में, भगवान विष्णु को बता रहे हैं, वामन देव को बता रहे हैं कि यज्ञ में बहुत त्रुटियां होती है, बहुत सारा विस्तार पूर्वक आयोजन होता है, उसमें भी बहुत त्रुटियां होती है, कमियां होती है, ब्राह्मणों के भाव में कमियां होती है, ब्राह्मणों के मंत्रोच्चारण में उनका मूड बदल सकता है, वस्तुएं अशुद्ध हो सकती है। इसलिए अगर ये इतने विशाल रूप में अरेंज किया हुआ जो यज्ञ है वो अगर परिपूर्ण करना है, परिपूर्ण का मतलब क्या है, भगवान को संतुष्ट करने वाला होना है, क्योंकि यज्ञ का उद्देश्य क्या है, भगवान की संतुष्टि, विष्णु की संतुष्टि, अगर वो प्राप्त करनी है तो अंत में भगवान के नाम का कीर्तन करना होगा। ये वो कभी बता रहे हैं, आज के समय कलयुग में नहीं बता रहे हैं, वो सत्ययुग में बता रहे हैं, जब बलि का, वामन देव का अवतार हुआ है बलि के लिए, वो बता रहे हैं कि जब भगवान के नाम का उच्चारण होता है, भगवान के नाम का कीर्तन होता है, तो यज्ञ की सारी त्रुटियां जो है वो पूर्ण हो जाती है और यज्ञ सफल हो जाता है और श्री विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, जो यज्ञ का उद्देश्य है। इसलिए प्रभुपाद समझाते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी क्षमता लिमिटेड है, मर्यादित है, और हमारी क्षमता मर्यादित होने के नाते हमें बहुत स्ट्रगल करने की भी जरूरत नहीं है। बड़ा आसान से हम भगवान के नाम का उच्चारण कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और हमारा जीवन भी एक यज्ञ बन सकता है भगवान की सेवा में। हमारे समय, हमारी बुद्धि, हमारे विचार की आहुति हम उस यज्ञ में दे सकते हैं, और जिन विशाल यज्ञों से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास अन्य युगों में लोग करते थे, वही उद्देश्य और वही लक्ष्य और वही गोल जो है वो बड़ी आसानी से इस युग में भी प्राप्त कर सकते हैं। जिस युग में कोई साधन अच्छा नहीं है, बुद्धि अच्छी नहीं है, समय अच्छा नहीं है, गुण अच्छे नहीं है, उस युग में भी हम भगवान के दिव्य नाम का उच्चारण करके जीवन को यज्ञ बनाकर वो भगवान के चरणों में अर्पण कर सकते हैं। तो इस तरह से सती ने अपने पिता के यज्ञशाला में प्रवेश किया, और आगे देखिए होता क्या है। सब लोग आइए, स्टे ट्यून्ड, कम एवरी डे इन द मॉर्निंग टू हियर द सिंथिलेटिंग सनसनीखेज स्टोरी ऑफ सती देवी इंटरेक्शन विद हिज फादर। हरे कृष्णा।